तो सर आप सुन रहे मोबाइल वाणी, मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुरकर आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ साथियों, विश्व शांति निर्माण पुरस्कार से सम्मानित पीवी राजगोपाल जी जो अभी हाल ही में कल ही जर्मनी से दिल्ली पहुंचे और वह जर्मनी में शांति का संदेश पहुंचाने के लिए जय जगत स्लोगन के साथ जर्मनी पहुंचे थे और जर्मनी में उन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया और कल ही नई दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली से अभी वो सीधे भोपाल के लिए रवाना होने वाले। तो अभी मोबाइल वाणी के माध्यम से उनसे हमारी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान हम आपको उनसे रूबरू कराने जा रहे। नमस्कार भाई साहब।
नमस्ते नमस्ते।
जय जगत
भाई। जय जगत दिनकर भाई।
भाई साहब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई आप अभी जो जर्मनी गए थे शांति का संदेश देने के लिए और कल ही आप दिल्ली रवाना हुए, तो जर्मनी में किस उद्देश्य से आपने शांति का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया?
तो जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था बर्लिन में, और बर्लिन में शांति सम्मेलन का बहुत महत्व है क्योंकि बर्लिन का दीवार कुछ वर्ष पहले तोड़ा गया और जनता के प्रयास से तोड़ा गया, क्योंकि ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को एक करने का काम हुआ। इसका ये महत्व है, इतना जबरदस्त महत्व है कि दीवारें बन रही है सब जगह, एक देश के दूसरे देश के बीच में, और ये एक अच्छा उदाहरण है कि दीवार टूट रहा है। कि अब हम चाहेंगे कि कोरिया में भी दीवार टूटे, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच में, हम चाहेंगे कि इंडो पाकिस्तान के बीच का जो दिल का दीवार है वो टूटे। दुनिया भर में एक तरफ हम लोग जय जगत कह रहे हैं कि सब लोगों का के लिए हमारे पास एक धरती है, इस धरती में हमको सबको जीना है और यहीं पर मरना है। तो इस धरती पर एक परिवार जैसे कैसे जी सकते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये तो सिर्फ नारा बन के तो नहीं रह सकता, उसको तो चरितार्थ करना होगा, सच्चा बनाना होगा। तो उस दृष्टि से कैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का और जय जगत का, ये सब जो कल्पना भारत से निकला है, इन कल्पनाओं को कैसे साकार किया जा सकता उसको देखना है। अब इसमें एक दर्दनाक बात क्या है, देखिए आप, हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि कितने कितने रोहिंग्या लोग वहां से जबरदस्त भगाया गया म्यांमार से, वो सभी भी बांग्लादेश में भारत में शरण लिए हुए, कितने साल लगेगा उनको दोबारा अपने जिंदगी को सही करने में। उसी प्रकार अफ्रीका से जाने वाले, सीरिया से जाने वाले, अफगानिस्तान से जाने वाले कितने लोग मेडिटेरेनियन समुद्र में डूब के मर रहे हैं। हम लोग रोज सुन रहे हैं कि बोट खराब, बोट में बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। तो एक तरफ दीवार टूट रहा है बर्लिन जैसी जगह पर, दूसरी तरफ दीवारें बन रही है। तो हम लोग इकट्ठे होकर इस पर विचार कर रहे थे कि दुनिया भर की जो दीवारें, दिल की दीवार है, सही ढंग से पत्थर की दीवार है, इन दीवारों को कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे कम किया जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर इस प्लैनेट को बचा सके, इस प्लैनेट में जीने वाले लोगों को बचा सके। इसी संदर्भ में मैं मोबाइल वाणी के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस समय का उपयोग करके, क्योंकि मुझे मेरे मन में आया कि आप जो प्रयास कर रहे हैं दिनकर भाई, इसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप आजीविका को लेके, किसान के मुद्दे को लेके, पर्यावरण के मुद्दे को लेके, शांति के मुद्दे को लेके, आदिवासियों के मुद्दे को लेके, या हमारे सरकारों के निर्णय, सही निर्णय गलत निर्णय को लेके, आप जिस प्रकार निरंतर कार्यक्रम चला रहे हैं, ये मेरे जैसे लोगों को बहुत प्रेरणा देती है। क्योंकि आप भले ही सोचते होंगे कि आप देश के एक कोने में बैठे हैं, इसका क्या असर होता होगा, लेकिन आपका जो मोबाइल वाणी है हम सबको बहुत प्रेरणा देते हैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक देश के कोने में बैठकर एक इंसान या एक टीम, मोबाइल वाणी की एक टीम इतना बड़ा काम कर सकता है देश के, देश को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को सच्चे न्याय दिलाने के लिए, तो हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकता। तो आपके प्रयास से मैं बहुत प्रभावित हूँ और शांति प्रयास में दुनिया भर में घूमते समय मैं मोबाइल वाणी के प्रयास के बारे में भी सोचता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, खास करके मीडिया मित्रों से बात करता हूँ कि देखिए मोबाइल वाणी जो काम कर रहा है आज के सदी में, इतने तमाम परेशानियों के बावजूद भी, संसाधनों के कमी के बावजूद भी, निरंतर अपने बात को हजारों हजारों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रशंसा की बात है। तो मैंने सोचा कि शांति के प्रयास में तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन शांति अमन चैन के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ दिनकर भाई इस अवसर पर।
भाई साहब, जैसा कि आपने अपने महत्वपूर्ण चर्चा में मोबाइल वाणी से संबंधित जो बातें कही, मोबाइल वाणी ग्राम वाणी के माध्यम से संचालित होती है और ये संपूर्ण राज्य में अलग अलग राज्यों के नाम से इनका अलग अलग नंबर है और अलग अलग जिले के नाम से इसका एक अलग अलग नंबर है और वो आप सभी के सहयोग के कारण ही यह महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पा रहा है, जिसमें अंतिम व्यक्ति में बैठा व्यक्ति भी अपनी राय साझा करता है और आपकी भी राय कई बार मोबाइल वाणी के माध्यम से लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया और हम आगे भी चाहते कि मोबाइल वाणी के लिए आपका स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन ऐसा ही बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने शांति के लिए ये देश ही नहीं तो विश्व के अन्य देशों में भी आप जाते हो और शांति का संदेश देते हो, हमारे लिए और देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन हम अंतिम प्रश्न में आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज देखा जाए तो आगामी माह में मध्य प्रदेश सहित 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है और चुनावों के पहले तो स्थिति यहाँ पर बनती है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं निरंतर कहता हूँ कि देखो, जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, शक्ति का उपयोग हमेशा शांति अमन चैन को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, तोड़ फोड़ के लिए नहीं करना चाहिए। तो वो परिवार से लेकर ऊपर तक ऐसा, अगर मान लो घर में किसी व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत है, पैसे का ताकत, बुद्धि का ताकत, शरीर का ताकत, उनका काम है कि घर में शांति बनाए रखें, शांति के लिए माहौल बनाए रखें। तो देश में भी कुछ पार्टियां ताकतवर होंगे, कुछ पार्टियां कमजोर होंगे, कुछ पार्टियां टूटेंगे, कुछ नए पार्टियां बनेंगे, ये सब तो चलती रहती है। आवश्यकता क्या है? देश को सुंदर बनाए रखना है, देश के माहौल को सुंदर बनाए रखना है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ ये भारत में कि हम माहौल के बारे में सोच नहीं रहा है। सड़कें बन रही है, हवाई पट्टियां बन रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, विदेशी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वगैरह, ये तो ठीक है, ये तो चलता रहता है। लेकिन क्या लोगों के दिल में प्यार बढ़ा है? क्या लोगों के दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा बढ़ा है? क्या या देश में रहने वाले गरीब लोगों को न्याय ज्यादा मिला है? क्या तो मैं सोचता हूँ कि चुनाव में सिर्फ कौन जीतेगा कौन हारेगा उस बहस पे जाने के बदले, कोई भी जीत के आता है, सत्ता में बैठता है, तो वो प्रेम बढ़ा रहे हैं, न्याय बढ़ा रहे हैं या दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, आपस में विरोध बढ़ा रहे हैं और अन्याय बढ़ा रहे हैं, इस ढंग से देखने का समय आ गया है। तो मैं सबको कहता हूँ कि अहिंसा के नजरिए से अपने काम को देखिए। क्या आपने पूरे कार्यकाल में अहिंसा को बढ़ाया या हिंसा को बढ़ाया, न्याय को बढ़ाया अन्याय को बढ़ाया, प्यार को बढ़ाया दुश्मनी को बढ़ाया? ऐसे देखेंगे तो पिछले दिनों में थोड़ी सी मैंने असंतोष महसूस किया अपने मन में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में क्यों असंतोष बढ़ रहा है, लोगों के मन में भय क्यों बढ़ रहा है, भय मुक्त होने के बदले भय क्यों बढ़ रहा है? तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अहिंसा के दृष्टि से अपने सारे कर्तव्य को देख, काम को देखने का समय आ गया है, ताकि वो सत्ता में रहते हुए, अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, पैसा को इस्तेमाल करते हुए देश में प्रेम बढ़ाएं, अहिंसा बढ़ाएं, आपसी सद्भावना बढ़ाएं और विरोध और आपस के द्वेष हैं उसको कम करें। ये एक बहुत बड़ा काम हर पार्टी को करना है। मेरे मान्यता है कि नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने हारने की इस होड़ में हम कई बार अपने जिम्मेवारियों को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम दुनिया के लिए गुरु हैं। दुनिया के लिए गुरु बनना हो तो व्यवहार से गुरु बन के दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, किताब में लिखने से नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आगे से पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत ज्यादा सजग होने का टाइम आ गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश देश की जनता के लिए दिया, इसके लिए मोबाइल वाणी आपका धन्यवाद करती है।
मैं धन्यवाद देता हूँ मोबाइल वाणी को। थैंक यू दिनकर भाई।